पहाड़ और मेरा जीवन का ये 23वां एपिसोड, जब संजू वर्टके की अफसरों के बच्चों वाली साइकिल मैंने डुट्याल की टांगों के बीच घुसाई। जैसा कि मैंने पिछली किस्त में आपको अपने दोस्त संजू वर्टके के बारे में बताया था कि उसके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा। अगर वह मेरा दोस्त न बनता तो मेरा आत्मविश्वास उस तरह विकसित नहीं हो पाता जैसे कि वह विकसित हुआ और इस लायक बना कि समय आने पर मैंने पहले ही प्रयास में सेना का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का बहुत मुश्किल माने जाने वाला 4 दिन का इंटरव्यू पास किया। संजू वर्टके ने सबसे बड़ा काम यह किया कि उसने मुझे 2-4 दिनों के लिए अपनी लाल रंग की अफसरों के बच्चों वाली साइकिल चलाने को दी। उसने सिर्फ एक ही वादा लिया मुझसे कि मैं साइकिल देख कर चलाऊँ। उस साइकिल की चेन खराब थी, उसने उसे ठीक करवा कर देने की भी रिक्वेस्ट की। मैंने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और साइकिल को 1 किलोमीटर दूर हाथों से चलाकर ले गया। शाम ढल चुकी थी और रात घिरने वाली थी। मैं घर के अहाते में उस साइकिल को खड़ा कर गर्व से उसे माँ को दिखाने से पहले उस पर बैठने का अप्रतिम सुख लेना चाहता था, लेकिन मुझे साइकिल चलानी ठीक से आती नहीं थी। दिल्ली में जो कैंची मार कर चलाई बस वही चलाई, इसलिए मैं साइकिल को ठीक करवा उसे एक ऐसी सड़क पर ले गया जहाँ बहुत कम लोग आ जा रहे थे। साइकिल पर सवार होने के लिए मुझे पिलर की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि उस पर खड़े हो मैं साइकिल को तिरछा कर और पैडल को ऊर्ध्व दिशा में रख कर उस पर सवार हो रहा था। मेरा सारा ध्यान इस पर था कि जैसे ही मैं पिलर छोड़कर समूचा साइकिल पर आ जाऊं, वैसे ही तेज गति से पैडल घुमाऊं, क्योंकि साइकिल जितनी रफ्तार पकड़ लेती उतना संतुलन अच्छा हो जाता। धीमे चलाने पर साइकिल का संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता था, इसलिए मैं एक बार पुलिया पर खड़े हो साइकिल टेढ़ी करके उस पर बैठ जाने के बाद यह सुनिश्चित कर रहा था कि उसकी रफ्तार कम न हो। साइकिल चलाते हुए पहली दुर्घटना इसी कर हुई कि मैं गति तेज किए हुए था। हुआ यह कि जब मैं ऊपर सीट पर बैठ खुद को दुनिया का सम्राट समझते हुए तेजी से पेडल मारता चल रहा था, सड़क की एक ओर एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। वह दूर से तो सड़क के एक ओर था, पर उसके करीब पहुंचते पहुंचते मुझे लगा कि साइकिल उसी पत्थर की ओर बढ़ रही थी, मानो कोई चुंबकीय शक्ति साइकिल को उस पत्थर की ओर खींच रही थी। आप लोगों में से जितने लोग साइकिल चलाना जानते हैं वे इस तथ्य को बखूब समझते होंगे कि साइकिल चलाना सीखते हुए आप अगर सड़क पर पड़े किसी पत्थर या किसी गड्ढे से बचने की कोशिश करते हैं तो आपका पत्थर से टकराना और गड्ढे में गिरना तय हो जाता है। अपनी साइकिल को उस पत्थर की ओर यूं खींचते देख मैंने पूरी ताकत लगाकर उस चुंबकीय शक्ति को तोड़ने की कोशिश की और सफल भी हुआ, लेकिन उस चुंबकीय शक्ति से निकलकर मैं नाले की निर्वात शक्ति के घेरे में आ गया। जी हाँ, बगल में ही एक नाला था। पत्थर से बचने के अगले ही क्षण मैंने खुद को मैं साइकिल इसी नाले में गिरते देखा। मैं देख ही सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। चीज़ें जब हर तरह की शक्तियों के प्रभाव से मुक्त होकर स्थिर हुई तो मैंने पाया कि मेरे पैरों में दीवार के साथ रगड़ लगने से गहरी खरोचें आ गई हैं। मैंने अपने शरीर को ठीक से जांचने से पहले साइकिल की जांच की, क्योंकि अब तक अंधेरा हो चुका था, इसलिए स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी में साइकिल ठीक से देखी नहीं जा पा रही थी उसके खरोचें आई है कि नहीं आई। जैसा कि ऐसी दुर्घटना में अक्सर मेरे साथ पहले भी होता रहा, मुझे भगवान याद आ गया। मैंने भगवान को याद करते हुए प्रार्थना की कि मेरे शरीर पर खरोचे दे देना, पर साइकिल के खरोच न लगाना। मुझे दूसरी चिंता यह हुई कि कहीं किसी ने मुझे नाले में यूं गिरते हुए तो नहीं देखा। मैंने तुरंत साइकिल उठाई और थोड़े संघर्ष के बाद नाले से बाहर आ गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि यह एक सूखा हुआ नाला था। बाहर आकर मैं साइकिल को चलाकर लैंप पोस्ट की रोशनी के नीचे ले गया। सड़क पर जब अब भी लोग चल रहे थे, वहाँ मैंने इस तरह साइकिल की जाँच की कि किसी को यह न लगे कि मैं कुछ देर पहले साइकिल समेत नाले में जाकर गिरा था। लैंप पोस्ट की रोशनी में मैंने देखा कि साइकिल खरोच खाने से बच गई थी। उस रात मेरी चैन की नींद के लिए इतना ही बहुत था। अगले दिन संडे था। मौका मिलते ही मैं फिर साइकिल लेकर निकल पड़ा। आज मैं कल के मुकाबले बेहतर अनुभव लेने की फिराक में था। जैसा कि नौसिखियों के साथ होता है,
कि उनकी बुद्धि ठीक कभी ठीक से काम नहीं करती। मेरे दिमाग में विचार कौन था कि साइकिल को मैं हेलीपैड की ओर ले जाऊं और वहां से जो घुमावदार सड़क फिसलती हुई नीचे आकर पिथौरागढ़ वड्डा रोड से मिलती है, उस ढलान वाली सड़क पर रफ्तार से साइकिल चलाते हुए ठुलीगाड़ अपने घर की ओर लेकर आऊं, घर के आगे पहुंचकर माँ को आवाज़ लगाऊं कि देख तेरा बेटा कैसे अफसरों के बच्चों वाली साइकिल चला रहा है। माँ मुझे यूँ साइकिल चलाते देख कर कितना खुश होगी। सोच के मैं रोमांचित हुआ जा रहा था। साइकिल को मैं काफ़ी ऊंचाई पर स्थित हेलीपैड के करीब लेके गया। अब यहाँ से ढलान वाली सड़क शुरू होती थी जो बहुत घुमाव लेते हुए नीचे उतरती थी। मैंने जैसे ही एक पिलर पर खड़े हो टेढ़ी साइकिल पर खुद को जमाकर हल्के से पैडल के साथ साइकिल आगे बढ़ाई। मुझे उसके बाद पैडल मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ढलान इतनी थी कि साइकिल खुद ब खुद नीचे उतरने लगी। जैसे जैसे वह नीचे उतरती जा रही थी वैसे वैसे ही उसकी गति में भी बेतहाशा इजाफा होते जा रहा था। मेरी जुल्फे हवा में उड़ने लगी थी, मेरे चेहरे पर हवा के थपेड़े पड़ रहे थे। मेरे लिए इतनी तेज़ी से घूमते पैडलों पर पैर बनाए रखना मुश्किल हो रहा था, सो मैंने पैर उठाकर आगे वाले डंडे पर रख लिए थे। मैं हवा में पेंग मारता बढ़ रहा था। मैं शब्दों में बता नहीं सकता कि मुझे कितना मज़ा आ रहा था, लेकिन जीवन की गति भी पेंडुलम की तरह होती है। जितनी वह एक ओर जाती है उतनी ही दूसरी ओर भी जाती है। अभी जो मैं इतना प्रसन्न हो हवा में उड़ रहा था तो जल्दी ही मुझे ज़मीन पर भी आना था। मेरे साथ भगवान बहुत क्रूर मजाक करने वाला था। जैसे ही मैं लगभग ढलान के आखिरी सिरे पर पहुंचकर मुख्य सड़क पर एक जरा सा मोड़ लिया, मैंने देखता क्या हूँ कि सामने तीन चार डुटियाल भेड़ों का एक पूरा का बड़ा सा झुंड लिए जा रहे हैं। भेड़ों ने पूरी सड़क को घेर रखा था। भेड़ों और उन डुटियालों को यूँ सड़क पर जरा से फासले पर देखते ही यह तो तय हो ही गया था कि मेरी उनसे टक्कर होने वाली है, लेकिन अभी यह तय करने की गुंजाइश ज़रूर बची हुई थी कि मैं टक्कर किसे मारूँ, भेड़ को या डुटियालों को या किसी एक डुटियाल को। मैं भेड़ को नहीं मारना चाहता था क्योंकि उससे टकराकर साइकिल उलट सकती थी। डोट्याल को साइकिल जरूर मारी जा सकती थी, लेकिन मैंने आखिरी क्षणों में दोनों को बचाने की कोशिश की, ईमानदार कोशिश। साइकिल का हैंडल अपने आप किनारे की ओर मुड़ गया। सबसे किनारे सड़क के बरसाती नाला था, उसके बगल में एक वयोवृद्ध डोट्याल चल रहा था। मैंने नाले और डोट्याल दोनों को बचाने का प्रयास किया, पर मेरे अचेतन मन ने मुझे बचाने की जुगत बनाते हुए साइकिल के हैंडल को वयोवृद्ध डुटियाल की दोनों टांगों के बीच घुसेड़ दिया। वह डुटियाल 2 फुट हवा में उछला और नाले में जा गिरा। टकराने से इन पहले मैंने आंखें बंद कर दी थी। आंखें खोली तो खुद को जमीन पर पाया। मैंने तुरंत साइकिल उठाई और इससे पहले कि डुटियाल को कुछ समझ आता कि हुआ क्या, मैं पैदल ही साइकिल लेकर उल्टी दिशा में दौड़ पड़ा। मुझे पीछे से आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे रे 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 मार डाला रे इसने बूढ़े को। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधे वहाँ जाकर रुका जहाँ से मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था। मैंने वहीं पहुँचकर साइकिल का मुआयना किया, देखा कि उसका हैंडल टेढ़ा हो गया था। मैंने साइकिल का अगला टायर अपने टांगों के बीच फंसा कर हैंडल को सीधा किया। साइकिल पर भी एक दो जगह खरोचें आई थी। एक बार साइकिल चेक कर लेने के बाद मैंने खुद को भी चेक किया। बाएं पैर का घुटना छिल गया था। बाएं कोहनी पर मुझे खून रिश्ता दिख रहा था। मैं घबरा रहा था कि जिन दुकान वालों ने मुझे उस तरह एक वयोवृद्ध डुटियाल की टांगों के बीच साइकिल घुसाते देखा कहीं वे मेरी माँ को शिकायत न कर दें। छोटी जगह थी इसलिए सब एक दूसरे को पहचानते थे। माँ की मार से मैं डरता था। मैंने इसी डर से साइकिल तुरंत संजू वटके को वापस करने का फैसला किया। उसके बाद मुझे साइकिल चलाने का मौका 2 साल बाद ही मिलने वाला था, जब मैं 8वीं में राजस्थान गया। वहाँ मैं 2 रुपये में दिन भर के लिए साइकिल किराए पर लेकर स्कूल जाने के बजाय जयपुर कोटा हाईवे पर साइकिल चलाता था और शाम को साइकिल वापस कर ठीक स्कूल की छुट्टी के वक्त घर पर वापस आ जाता था। घर वालों को कभी पता नहीं चला, पर वह किस्सा मैं बाद में सुनाता हूँ। फिलहाल यह कि संजू वटके की साइकिल से पिथौरागढ़ में गिरने के बाद मैं कम से कम साइकिल से जीवन में आज तक तो कभी नहीं गिरा।